Bucket Mantra. Bucket Mantra. Bucket Mantra. Bucket Mantra. Bucket Mantra. Bucket Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. यहाँ हम आर्थिक व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें आप तक लाते हैं. आज की प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा जी, स्टूडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन.
वार्म वेलकम दीपशिखा.
थैंक यू राजेश एंड धन्यवाद प्राची.
चर्चा शुरू करेंगे मगर इससे पहले हेडलाइंस.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन अ फ्लैट नोट. सेंसेक्स स्लिप्स 43 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 26,177. मोस्ट एशियन मार्केट्स क्लोज इन अ पॉजिटिव जोन एंड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्स India-New Zealand Free Trade Agreement as the first women-led FTA.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सपाट बंद हुए. सेंसेक्स 43 अंक गिरा. निफ्टी 26,177 पर बंद हुआ. अधिकांश एशियाई शेयर बाजार मुनाफे के साथ बंद हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को पहला महिला नेतृत्व वाला व्यापार समझौता बताया.
The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
श्रोताओं आइए रुख करें आज देश के प्रमुख सूचकांकों की तरफ. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मिले जुले रुख के साथ बंद हुए. दोनों सूचकांकों में पूरे सत्र के दौरान उतार चढ़ाव देखने को मिला और अंततः ये लगभग अपरिवर्तित रहे. सेंसेक्स 43 अंक गिरकर 85,525 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी में 5 अंक की मामूली बढ़त दर्ज करते हुए 26,177 पर बंद हुआ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार सूचकांक सकारात्मक दायरे में बंद हुए. मिड कैप सूचकांक लगभग स्थिर रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज हुई.
Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty ended on a mixed note in a choppy trade today. Both indices swung between gains and losses throughout the session and ultimately settled nearly unchanged. The Sensex dipped 43 points to close at 85,525, while the Nifty eked out a marginal gain of 5 points to settle at 26,177. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed in a positive zone. The mid-cap index settled nearly flat and the small-cap index rose almost 0.4%.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई. सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाली कंपनियों में इन्फोसिस के शेयर 1.2% से अधिक गिरे. भारतीय एयरटेल के शेयर 1.1% से अधिक गिरे और अदानी पोर्ट्स तथा सन फार्मा के शेयर 0.9% से अधिक गिरे. शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियों में आईटीसी के शेयरों में लगभग 1.3% की वृद्धि हुई. अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.2% से अधिक की वृद्धि हुई और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के शेयरों में 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई.
अक्रॉस सेक्टरल इंडिसेस ऑफ द बीएसई 14 आउट ऑफ 22 सेक्टर्स रजिस्टर्ड गेन्स. अमंग द टॉप गेनर्स कमोडिटीज रोज नियरली 0.7%. यूटिलिटीज क्लाइम्ड 0.6% and metal added 0.5%. Among the top laggards, IT as well as focused IT dropped 0.7%, PSU Bank lost over 0.3%, and healthcare as well as realty fell more than 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,292 companies advanced, 1,892 declined, and 181 remained unchanged.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले मामूली रूप से कमजोर होकर 89.66 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 97.89 पर था। दीपशिखा जी, आईटी सेक्टर में आज हमने देखा कि गिरावट आई है 0.7% की। ऐसे में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में यानी साल 2026 में आप आईटी को किस मकाम पे देखती हैं?
देखिए, आईटी में जिस तरह का अर्निंग्स हमने पिछले कुछ समय में देखा था कि एक बहुत ही अच्छा अर्निंग्स दिया था, बहुत ही वो राइजिंग स्टार था, वैसा शायद 2026 नहीं रहेगा इस क्षेत्र के लिए। थोड़े प्रेशर्स हैं, एआई में क्या होता है, अर्निंग प्रेशर्स हैं, एक्सचेंज रेट का वॉलेटिलिटी है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे इस क्षेत्र के लिए। तो जो निवेशक हैं इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए निवेश करें। आईटी क्षेत्र में भी जो लार्ज कैप्स हैं और मिड कैप्स हैं उनमें हो सकता है कि थोड़ा सा डाइवर्जेंस रहे, पहले भी रहता है, हो सकता है अभी भी रहे। तो लार्ज कैप्स में हो सकता है कि थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस रहे आने वाले साल में।
So what Deepshikha, we talked about IT, what do you think about the sectors like the financials, healthcare, consumption? Will they continue to offer fresh opportunities for investors?
Definitely, Rajesh. I think the sectors for 2026, if one were to say, you need to keep a watch on, financials definitely. Consumption sectors, you know, consumer goods sectors. Because we've seen, this resurgence of demand in a number of consumer sectors. That is a theme which I believe will play out in 2026 as well. The other sectors would be, of course, healthcare and pharma. I think they are the sectors which can be looked at. Also, your capital goods and infrastructure. Because the capital expenditure by the government is, I think, will continue to get pushed from in terms of funds. States are also focusing on a lot of capital expenditure and infrastructure development. So I think sectors connected with this would definitely are the ones which investors should keep in watch.
So you mentioned two things, two questions I have.
Sure.
Role of the rural economy when it comes to consumption. And second, budget. Will CapEx have a major role to play in 2026 budget?
I think that's one theme which has been playing out for multiple years. We've seen the last few budgets. The CapEx push has been the dominant theme. While the support may have come down in terms of, you know, a very large amount, but I think government is not letting it sort of really slip or anything. They are, you can see private investment, private capital investments not picked up as such. There is, resurgence in some areas, but it's not a very secular rise. And I think that is one sort of indication that the government is waiting for to pull back on capital expenditure. So which is why I say 2026, also the upcoming budget, capital expenditure, definitely. I don't think they are going to pull back from that.
Deepshikha, अब बाजार के आज की अगर चाल की हम बात करें तो आज के उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी लगभग स्थिर रहे हैं, तो इनके पीछे क्या घरेलू या वैश्विक संकेत हमें नजर आते हैं या हैं?
प्राची, दोनों हम कहें तो फैक्टर्स, मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। वैसे भी ये हॉलिडे सीजन है, विदेशी निवेशक जो हैं वो इस समय वहां पर छुट्टी हो जाती है और नए एलोकेशंस जो है उनके नए साल में ही आते हैं, तो भारतीय निवेशक जो हैं वो भी इसी तरह के फेज में हैं। एक कोई बहुत ट्रिगर नहीं है मार्केट्स के पास, हम देखें कि पिछले दो महीने से ये उम्मीद थी कि शायद जो है यूएस के साथ, अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड समझौता होने वाला है उसका कोई अनाउंसमेंट शायद आ जाएगा दिसंबर तक, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है. साल ख़त्म होने वाला है तो मार्केट को ऐसा कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा है. और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो रुपए का जो ओवरहैंग है, करेंसी का जो फ्लक्चुएशन हम देखते आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग है मार्केट के ऊपर. तो मार्केट भी इसीलिए एक वो कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है, चल रहा है वाला मामला.
Okay, so let me ask you, since we're talking, Prachi talked about Nifty 50. They have scaled fresh record highs in 2025. Many investors have found their portfolios lagging behind the headline indices. Does this divergence, Deepshikha, reflect a phase of sharp market polarization marked by large cap outperformance and pressure on mid and small cap stocks, while expensive valuation and uneven growth, earning growth is being seen?
This divergence, I think, comes from the fact that you have select stocks which have found favor, which have seen large scale, funds pouring in. They've been, they've given results, and they are seeing interest not just from domestic institutions, but also from the foreign institutions. And I think that is a divergence which has played out.
Mm.
Also, if you see, historically also, sometimes large stocks have always found favor. But when it comes to like real appreciation, some investors definitely find that, smaller entry points, smaller stocks, which have not reached those levels of valuation, give them that scope of earning. But if you look at this last year, 2025, I think broadly you have seen that dominance happening.
Okay. You mentioned about the US trade deal. May not happen, may come any time actually, or
absolutely,
may not come at all.
Absolutely. I mean, the year is yet to end.
Yes.
So one is okay. Hopeful.
So we will be talking about our FTA with New Zealand. We just talked a few days back about Oman. And before that, we talked about UK. Are these not a big sentiment booster?
They are, definitely. They are a big sentiment boosters. But if you look at our export basket, our largest market for our exports is US. Though we are definitely trying very hard to diversify. And if you look at the trade data, the export numbers that came out, that diversification story is definitely playing out. But definitely, if your big market is not sort of favorable to you, I think that impact will definitely show. And we face a really high tariff there. So 50% is a bit too high vis-a-vis your competitors. So I think that is a huge sort of a pull down on the overall sentiment in the market as well.
I'll give you some figures and would like to have your views on this. Average monthly SIP contribution surged from 3,600 crore in FY17 to ₹28,691 crore in Q2 FY26. And in September this year itself, we witnessed an all-time high of ₹29,361 crore. So are SIPs expected to remain the preferred vehicle for disciplined long-term investing, further broadening household participation across regions?
I think what SIPs have done for the Indian retail market is it has democratized the market. If you remember, there were years where there used to be this lament as to why, the domestic cult is yet to develop. Where are the domestic investors? And
today SIP, they are the backbone, huh?
SIPs have clearly done that. And absolutely, you said it, they are the backbones. So I think that interest in SIP is not going to fade away. That's going to remain a dominant theme, especially because there are a lot of youngsters who've now, SIPs have really found favor with them.
They
have realized the importance of it. And they are seen as good vehicles to make investments.
दीपशिखा जी, FII से निकासी देखने को मिली, निवेश मिला, DII से निवेश मिला SIP के जरिए, तो क्या यही चलन 2026 में भी हमें इसी तरीके से देखने को मिलेगा या कुछ अलग किस्म के बदलाव?
प्राची, मुझे लगता है कि जो FIIs का हमने देखा कि थोड़ा एक ओवरहैंग था, नेगेटिव सेंटिमेंट था, बट हो सकता है कि FIIs जो हैं वो 2026 में बहुत सारे ट्रिगर्स हैं उनके वापस आने के. तो एक तो बजट ही है, हो सकता है बहुत पॉजिटिविटी आए. दूसरा ट्रेड डील है जो US के साथ होनी है, तो ये EU के साथ भी ट्रेड डील होनी है जो भी एक बड़ा समझौता रहेगा. तो बहुत सारे जो हैं पॉजिटिव्स हैं आने वाले समय में, आने वाले साल में, अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के साथ साथ, तो ये बहुत सारे ट्रिगर्स हैं उनके वापस आने के लिए. तो मुझे लगता है कि FIIs जो हैं वो वापस आएंगे बाजार में.
जी, रुक करते हैं अब एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजार सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए. सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.6% से अधिक बढ़ा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स लगभग 0.3% बढ़ा. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक मामूली रूप से ऊपर रहा और जापान का निकेई सूचकांक सकारात्मक रुझानों के साथ स्थिर रहा. वहीं हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स में 0.1% की गिरावट दर्ज की गई. आज प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में मिलाजुला रुख देखने को मिला. अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक लगभग 0.2% नीचे गिरा हुआ नजर आया. लंदन का फुटसी 100 लगभग अपरिवर्तित रहा, जबकि जर्मनी का डैक्स 0.4% से अधिक ऊपर कारोबार करता नजर आया.
Major US indices ended in a positive territory yesterday. Markets notched a third consecutive session of gains powered by rise in technology stocks. The S&P 500 climbed over 0.6%, NASDAQ Composite Index advanced more than 0.5%, and the Dow Jones Industrial Average added almost 0.5%. Technology stock seems to be playing, Deepshika, quite an important role going forward. What's your...
Hopefully, I guess, you know, this excitement around AI and its implications and how it will be used would sort of continue in 2026 as well. Though we did see, you know, some correction in their valuations, if you see, look at the US market. But hopefully that correction going forward, there would be some semblance there, you know, and they will continue to find favor.
While you were talking about the IT sector, you did mention about AI playing a very major role.
That's right. Because I think that is an area where all companies have sort of started thinking, they have started planning, because that is a force that's about to hit everybody, all spheres. So everyone has sort of got into that mode of preparation. So definitely that tech interface comes in, wherein you see a lot of tech companies, you know, associating or dealing or getting into these arrangements with companies.
Okay. Moving on, Prime Minister Narendra Modi today hailed the recently concluded India-New Zealand Free Trade Agreement, FTA, as a historic milestone, which is India's first women-led FTA. He noted that almost all the entire negotiating team comprised women. Mr. Modi said this while sharing an article by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. The Prime Minister underlined that India's FTA today go well beyond tariff reductions, forming part of a broader mission to strengthen the economy and improve the lives of millions. In his article, Mr. Goyal explained how this trade deal marks a significant leap in India's trade diplomacy. Speaking exclusively to Akashvani, Ajay Sahai, Director General and CEO of Federation of Indian Export Organizations, said that India-New Zealand FTA stands out as one of India's fastest concluded FTAs.
India-New Zealand Free Trade Agreement has been concluded in the record time of 9 months with 5 rounds of negotiation, which highlights the understanding between the two countries. Indian exporters will be getting duty-free access in the New Zealand market on all the products being exported from India. Even in the services sector, we will be getting market access, the cap of number of students from India. The students can sustain themselves as they will be allowed to work for 20 hours a week while they are studying. New Zealand will be expediting the market access for pharmaceutical product and all those drugs who are registered in US, UK or EU, they will get the expeditious treatment. New Zealand will also be providing access to Indian GI product and the organic product. And in the process, we will be able to double our exports. Though the government aims at 5 years, we feel that within 3 years' time, we'll be able to increase it from 2.5 billion to 5 billion.
Anil Wadhwa, former ambassador, highlighted the impact of the FTA on the services sector.
FTA केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, सिर्फ गुड्स तक सीमित नहीं है, सेवाओं के क्षेत्र में इसे भारत के अब तक से सबसे महत्वाकांक्षी प्रस्तावों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी जैसी पेशेवर सेवाएं हैं, इंजीनियरिंग है, कंसल्टेंसी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारतीय सेवा प्रदाताओं को न्यूजीलैंड में बेहतर पहुंच मिलेगी, और इसके साथ ही लगभग 5,000 अस्थायी कार्य वीजा का प्रावधान भारतीय पेशावरों और कुशल श्रमिकों के लिए एक बड़ा अवसर खोलता है। और सबसे बड़ी बात कि न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। एफ्टा जो समझौता हुआ था उसके जैसे बड़े निवेश वादों की तुलना में छोटी है, फिर भी न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें, उसके आकार को देखें, तो ये उल्लेखनीय है। और ये निवेश कृषि और प्रौद्योगिकी और डेयरी, नवाचार, नवीनीकरण ऊर्जा और शिक्षा और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में केंद्रित हो सकता है।
दीपशिखा जी, इस एफटीए से भू राजनीतिक और रणनीतिक पक्ष से अगर हम देखें तो भारत ने व्यापार के क्षेत्र में किस तरह से और क्या अपनी संभावनाएं तलाशी हैं?
प्राची, न्यूजीलैंड अगर आप देखें कि एक दूसरे छोर में है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री के रूप में देखा जाता है उसको। दूसरा चीज है, भारतीय कंपनियों के लिए इस एफटीए में काफ़ी कुछ है। आप वहाँ पे बाजार सिर्फ न्यूजीलैंड तक सीमित नहीं है, ऑस्ट्रेलिया पास में, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ऑलरेडी ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन बाकी भी दूर दराज के जो वहाँ पर आइलैंड कंट्रीज हैं आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दूसरा, एक बहुत स्ट्रेटेजिक उसको महत्व से देखा जाना चाहिए, क्योंकि आप एक उस क्षेत्र में आप एक बड़े देश के साथ आप ये ट्रेड डील कर रहे हैं। बाकी जो एडवांटेजेस वाधवा जी ने उनको बहुत अच्छे से बताया कि निवेश का, निवेश की अपॉर्चुनिटी, हमारे यहाँ से बहुत बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ने, उनके लिए वर्क वीज़ा है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ना सिर्फ कंपनीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, ये बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा एफटीए।
FTA has some very interesting new elements of technical collaboration in fruit product and fruit cultivation, honey production, and other areas including dairy, in which India is very touchy about, where they will bring the latest modern technology to India to help our farmers, and this way the incomes will go up.
Absolutely. I think very interestingly, we know that agriculture and dairy is a huge sensitive area for India, for Indian farmers. So government has taken care. But what we really require is, you know, processing technologies, which New Zealand is ready to bring. And in lot of area, even in agriculture, horticulture, they're going to support us through this FTA in technology. So absolutely a win-win for both sides.
दीपशिखा जी, आपने अभी हमें बताया कि इस अग्रीमेंट से हमारी किस तरीके से पहुंच बढ़ेगी। आपने बोला कि न्यूजीलैंड के आसपास के भी जो क्षेत्र हैं वहां पर भी एक हमें विस्तार मिलेगा। आपने वीज़ा और अपॉर्चुनिटी की बात की है, तो इस अग्रीमेंट के जरिए भारत की जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है वो मुझे लगता है कि एक बार फिर से सुर्खियां बटोरती हुई नजर आएंगी।
बिल्कुल, आपने देखा होगा और पिछले कुछ समय से इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है। हम ना सिर्फ आसपास के देशों में, हमने यूएई के साथ भी ये समझौता किया है, सिंगापुर में हमने किया है, तो भारत की तरफ से ये कोशिश चल रही है कि उसका जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दूसरे देशों के साथ अलाइन हो जाए, ताकि यहाँ के नागरिक ही नहीं, बाहर के नागरिक भी जब यहाँ आए तो उन्हें पेमेंट्स जो है वो करने में आसानी हो, तुरंत हो जाए। आप देखिए कि आपको कैश ना कैरी करना पड़े, आप QR से ही पेमेंट कर दें। तो एक भारत में ये जो प्रचलन हुआ है, ये भारत बहुत आगे है बहुत सारे देशों से भी, और बहुत एडवांस इकोनॉमी से भी बहुत आगे है इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में बहुत सारे देश चाहते हैं भारत का सहयोग, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर दूसरे देशों के साथ तैयार हो जाता है तो ना सिर्फ भारतीयों को, उनके नागरिकों के लिए भी बहुत सुविधाजनक रहेगा।
ईज ऑफ लिविंग को भी ये काफी
प्रमोट करता है, ईज ऑफ लिविंग, क्योंकि आप जाइए, आपको कैश कैरी करने का जरूरत नहीं, आप फोन से कर दीजिए, QR से हो जाएगा सब कुछ।
ओके, एंड आल्सो नोटवर्दी दीपशिका, वी टच्ड अपॉन इट, is the fact that market access to New Zealand will be given in over 70% of tariff lines, covering nearly 95% of bilateral trade value, while excluding almost 30% of products. In addition, New Zealand has also promised to facilitate an investment of $20 billion over the next 15 years. This is going to give a big boost to exports.
Absolutely, and this is, you know, one very significant element which India is bringing in its trade deals. Now, all these trade agreements, if you see in the past, they were largely dealing with just trade in goods and services. But this investment element is a very new thing. We did it with the ECTA group, and now we have brought it with the New Zealand, which would lead to not just, you know, a steady flow of investment in the country, also creation of jobs, creation of manufacturing within India. So that helps, you know, that supports India's own growth story. So definitely a huge positive element in this FTA.
जी, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आज कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताए गए हैं और अक्सर बिना गहन विश्लेषण के संदेह पैदा करने के लिए आलोचनाएं इसके बारे में की जाती हैं। नई दिल्ली में GDP उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आधार संशोधन पर दूसरी कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री नागेश्वरन ने कहा कि भारत को संशोधनों को कम करने की आवश्यकता है क्योंकि परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि सोशल मीडिया के युग में जनता को ठोस आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए देश को एक पेशेवर सहमति की आवश्यकता है। देशवासियों को एक जिम्मेदार चर्चा का अधिकार है ताकि आंकड़ों की विश्वसनीयता से जुड़े सवालों पर विमर्श लिया जा सके।
Global crude oil prices rose slightly today. Brent crude was trading over 0.1% up at $62.17 per barrel, while WTI crude was also trading over 0.1% up at $58.09 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading around 1.2% up at 1,38,680 rupees per 10 grams, and silver was trading 1.5% up at 2,15,990 rupees per kilogram a short while ago.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक फरवरी अनुबंध वाला सोना लगभग 1.2% बढ़कर 1,38,354 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और मार्च अनुबंध वाली चांदी 1.5% से अधिक बढ़कर 2,16,135 रुपए किलो पर थी।
दीपशिका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड टेकिंग ऑल आवर क्वेरीज रिलेटेड टू मार्केट एंड इकोनॉमी।
धन्यवाद दीपशिका।
धन्यवाद।
द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन अ फ्लैट नोट, सेंसेक्स स्लिप्स 43 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 26,177. Most Asian markets close in positive zone. And Prime Minister Narendra Modi hails India-New Zealand Free Trade Agreement as first women-led FTA. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Oh, 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 oh